कैसे बाबा के घर में हम सब कुछ सफल कर सकते, हमने देखा भी। और अब सुनेंगे रामनाथ भाई जी को हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस प्राप्त करने की विधि क्या है। अभी देखा एक बच्ची का बर्थडे था बहन का, तो केक भी काटा, तो कैसे सफल करना है, मनाया भी, खाया भी, और अब आगे बढ़ेंगे। हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस कैसे रख।
ओम शांति। हैप्पीनेस तो पहले मिल गया मना हैप्पीनेस हो गया, खुश हो गए ना। अभी हेल्थ और वेल्थ दो चाहिए, क्योंकि एक बात है, आप अपने आप से भी पूछ लो कि सभी बाबा के बच्चे हैं, कि बाबा के बच्चे होने के बाद सभी को तो वर्षा पूरा मिलना चाहिए ना। बाबा ने कहा बाप बच्चों को वर्षा देने आया है, तो सभी को हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस तीनों मिलेगा, तो सभी बाबा के बच्चे हैं। अगर माता जी के दो बच्चे हैं, माता जी के पास दो मकान है, एक मकान एक बच्चे को, एक मकान एक बच्चे को देंगे ना, एक बच्चे को तो टुकड़ा तो नहीं देंगे। तो सभी को बाबा ने कहा समान अधिकार है, तो वर्षा तो सबको मिलना चाहिए, तो मिलेगा नहीं मिलेगा? बहन जी कहती नहीं मिलेगा। हाँ मिलेगा, सबको पूरा मिलना चाहिए ना, इक्वल हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस तीनों। बाबा ने कहा बाप बच्चों को वर्षा देने आया है, तो अधिकार तो सभी को तीनों मिलेगा पक्का। हाँ बहन जी कहती ना कह रही है, कहती ना कर रही है, भाई जी बताओ। हाँ सबको मिलेगा पक्का। हाँ तो भाई जी और दूसरा कुछ कह रहे हैं, नंबर वार मिलेगा। हाँ नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार मिलेगा, तो नंबर वार क्यों, बच्चे तो बच्चे है ना, बड़ा बच्चे को ज्यादा, छोटे बच्चे को कम, ऐसा थोड़ी। बाबा ने कहा बाप के समान, बाबा ने बहुत दफा कहा छोटे मणके का लास्ट मणके को भी बाप समान प्यार करता है, तो वर्षा भी समान मिलना चाहिए, नंबर वार क्यों। अगर नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार है तो कौन सा पुरुषार्थ किसके लिए करना चाहिए वो भी होना चाहिए ना, तो पुरुषार्थ कौन सा है वो भी बताओ। इसके लिए क्यों, कभी कभी प्रश्न उठता है कि हमने इतना योग किया, इतना ज्ञान सुना, इतनी सेवा किया, ये बीमारी क्यों, ये समस्या क्यों, ये मेरे जीवन में विघ्न क्यों, तो इन सबका जवाब अलग अलग है। ये क्यों प्रश्न है उसका जवाब है। तब बाबा ने कहा अगर हेल्थ चाहते हो तो बाबा परमधाम से दवाई तो नहीं भेजेगा ना, इस बीमारी के लिए ये दवाई ले लो। तो बाबा ने विधि बताया, शास्त्रों में भी गायन है, दधीचि ऋषि ने हड्डी हड्डी यज्ञ में स्वाहा किया, तो हड्डी यज्ञ में डालेगा तो यज्ञ भ्रष्ट हो जाएगा ना। हाँ हड्डी तो नहीं डालते, अर्थात ये तन आपका नहीं, आप एक मिनट भी इस तन में नहीं रह सकते हो, अपना नहीं कह सकते, ऑर्डर आया टिकट आया चले जाओ, कह सकते हो एक मिनट के बाद आता हूं, कह सकते हो नहीं। तो ये तन किसकी सेवा कर रहा है, तो बाबा ने कहा इस सृष्टि पर यह रुद्र यज्ञ रचा हुआ है, तो ये रुद्र यज्ञ रचा हुआ है, इस यज्ञ की आप इस तन के द्वारा जितनी सेवा करते हो उतना आपका भाग्य बनता है। लेकिन संगम पर एक विधि है, एक का पदम गुना जमा होता है। अगर इस यज्ञ की संगम पर एक मिनट अगर इस यज्ञ की सेवा करते हो आप, एक जन्म के लिए निरोगी काया मिलेगा, हिसाब किताब भी है। इस यज्ञ की सेवा करो, सारे सृष्टि पर शिव बाबा ने आके ये रुद्र यज्ञ ज्ञान यज्ञ स्थापन किया है। इस यज्ञ की ये अश्वमेघ यज्ञ है, ये अश्व घोड़ा, इस तन के द्वारा इस यज्ञ की सेवा करो। बाबा ने कहा बच्चे मैं कुछ भी नहीं देता हूं, मेरे पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ मेरा नाम है भाग्य विधाता है, भाग्य बनाने की विधि बताता हूं। खेती में एक गेहूं का बीज बोलो तो 50-100 दाना लगेंगे, गेहूं बोलो और चावल उगेगा नहीं, ये चमत्कार नहीं होगा। तो जो बोते व्हाट यू सो सोशल यू रिप, जो बोएंगे वो मिलेगा। तो इस यज्ञ की, इस रुद्र यज्ञ के आप, जो बाबा ने आके सारे विश्व पर ये रुद्र यज्ञ रचा है, इस यज्ञ की, इस अश्वमेघ इस शरीर के द्वारा, अश्व के द्वारा स्वाहा करो, सेवा करो। कितना करते हो? अगर एक मिनट, बाबा ने कहा एक का पदम गुना रिटर्न है, एक मिनट अगर इस यज्ञ की, इस तन के द्वारा सेवा करते हो तो एक का पदम गुना रिटर्न मिलता है। तो एक का, एक मिनट किया, एक जन्म के लिए निरोगी काया मिलेगा। तो आप पूछो इस तन के द्वारा इस यज्ञ की कितनी सेवा करते हो? अपने आप तो नहीं होगा। आप कहेंगे भाई जी मैंने 10 लाख रुपया दिया तो बाबा मुझे निरोगी काया दे दो, तो दे देगा? अभी माता जी कहेंगे मैं बहुत बुजुर्ग हूं, मैं कुछ कर नहीं सकते हूं सेवा, बाबा मैं 10 लाख रुपया देता हूं तो मेरी तन निरोगी काया करो होगा? गेहूं का बीज बोलो तो भगवान जो चाहे कर सकता है, तो चावल का दाना उगेगा? नहीं, जो बोएंगे वो उगेगा। इसके लिए एक एग्जाम्पल बता दे, एक एक तीन चीज है, हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस, तीनों का मैं तीन एग्जाम्पल बताता हूं, फिर आप जवाब देना, ठीक है? अब आप कहेंगे तो तन तो भगवान की सेवा में लगाना है। एक सेंटर में एक कुमार था, तो बहन जी आके कहती थी बहुत, भाई जी ये सेवा बहुत अच्छा करता है, और वो अनपढ़ा हुआ है, राजस्थान का ही एक ही कुमार, बाकी माताएं दो तीन और दो चार कुमार भाई थे, लेकिन वो अनपढ़ा हुआ है, नौकरी करता है, सवेरे 7 बजे जाता है मुरली सुन करके, रात को आता है, पढ़ा लिखा हुआ नहीं। एक दिन ऐसा हुआ तो रोज वो मुरली सुनने आके आगे आगे बैठ जाता है। नंबर वन, आते बहन जी भी 7 बजे आते हैं मुरली सुनने के, सुनाने के लिए। अरे तुम इधर बैठ गया, जाओ जाओ 7 बजे पानी आया, पानी भरो। अभी क्या करो, चाह के पानी भरने गया। फिर एक दिन दो दिन किया, बहन जी आते मुरली सुनने तो देती नहीं है, मैं क्यों जाऊं? उसका लक्ष्य मुरली सुनना है, बाबा का श्रीमत है, बाबा ने कहा बच्चे श्रीमत बाबा का है, मुरली मिस नहीं करो। अब वो आके बैठे, एक दिन किया दो दिन, रोज बहन जी आते ही अरे तुम बैठ गया, जाओ जाओ पानी भरो। अब उसने तीसरे दिन से आना ही बंद किया, 1 साल हो गया। 1 साल में बहन जी मिली, भाई जी वो भाई आता नहीं अभी, अचानक वो भी मिल गया। भाई जी मैंने, अरे तुम सेवा पर जाते नहीं हो सेंटर में, भाई जी मैं क्या करूं? तो मैं जो मुझे मुरली सुनी तो नहीं मिलती है, जाते ही बहन जी कहती सेवा करो तो मैं क्यों जाऊं? अरे तुमने अपना भाग्य भी बिगाड़ दिया और भगवान को भी भूखा रख दिया। आप पानी नहीं भरेंगे तो भगवान को भोग कैसे लगेगा? तो भाई जी मैं क्या करूं? हमने 1 साल चला गया आपका, आपने अपना भाग्य भी बिगाड़ दिया, भगवान को भी भूखा रखा, तो आपने इतना दिन पूछ लेता था, तो अभी आप जवाब दे दो कि उसको क्या करना चाहता। पहले कंडीशन बताया मैंने, सवेरे जाता है शाम को आता है, अनपढ़ा हुआ, मुरली पढ़ नहीं सकता है। तो आप जवाब दे दो, ऐसे अगर आपके सामने परिस्थिति आई, अगर बहन माताजी सेंटर में आती है इतनी मेहनत करके दूर से, बहन जी कहती है सब्जी काटो, ये खाना बनाओ, बहुत मेहमान आने वाले, अभी बहन जी के मन में मन विचार नहीं चलेगा? बाबा कहते श्रीमत मुरली मिस नहीं करो, अब विचार तो चलेगा ना? तो क्या करना चाहिए, सेवा करना चाहिए कि मुरली मिस करके सेवा करना चाहिए, क्या करना चाहिए? जवाब कौन देगा? सेवा करना चाहिए, मुरली मिस करो, बाबा का श्रीमत है, बाबा ने कहा बच्चे मुरली मिस नहीं करो, तो ये श्रीमत छोड़ दे, शिव बाबा के मुरली में आता है ना, ये छोड़ दो सेवा करे। चलो एक भाई कहता सेवा करो, चलो भाई जी आप बताओ सेवा करना चाहिए, मुरली मिस करो चलेगा? नहीं, बाद में मैंने कंडीशन बताया, बाद में उसको जाना है नौकरी में, समय नहीं, आपके तो मुरली लेकर वो पढ़ नहीं सकता है। मुरली सुन करके, मुरली सुनने के बाद पानी तो 7 बजे आता, फिर आता नहीं, माइक तो है नहीं, आज नहीं 10 साल के बाद माइक में सुनने के लिए उसको बोल, उधर जहां पानी भरता है नल होता है वहां माइक लगेगा नहीं, पानी भरना है कि नल गवर्नमेंट का 7 बजे आता है, उस आधा घंटा आता है, उस समय पानी नहीं भरो फिर नहीं मिलता है। अब श्रीमत सुने किस, क्या करे? अभी आप जवाब दे दो, आपके सामने भी ये परिस्थिति है, सेंटर में बहुत दूर से आता है मुरली सुनने के लिए, बहन जी कहते अरे इनको स्टेशन छोड़ के आ जाओ, अब इसके मन में विचार तो चलेगा ना, कहो व्यर्थ नहीं सोचो। तो आपने ऐसी परिस्थिति किया तो क्या करे, अब आप बताओ, सेवा करना चाहिए, भाई जी बताओ। तो नहीं खाओ, तो अभी आप कहते मुरली नहीं सुनो कि सेवा नहीं करो अभी आप बता भाई, डॉक्टर साहब ने कहा गोली नहीं खाओ, डायबिटीज है, गोली नहीं खाओ, तो क्या कुछ तो खाना पड़ेगा ना। तो अभी यहां बताओ क्या करना चाहिए, सेवा करना चाहिए। तो पानी भरो, मुरली मिस किया तो चलेगा, मिल जाएंगे, चलेगा। आओ जाए, एक बहन माता है, बताओ। हाँ, बाबा की याद में कर, मुरली मिस करे चलेगा। अभी प्रश्न ये है ना, मुरली मिस करके सेवा कर रहा हूं मैं बाबा की, चलेगा ना। हाँ माता जी क्या कर रहे, क्या बीच में कैसे, वो तरीका बताओ। पानी बाहर आता है, हाँ, तो उसका सेवा करे, मुरली मिस करे चलेगा, नहीं ऐसे स्पष्ट बताओ। हाँ माता जी क्या कह रहे हैं, हाँ धीरे धीरे, पीछे माता जी बता रही है, हाँ पीछे माता जी बता रही है, नहीं बाद में उसके पास समय नहीं, पहले बताया मैंने। हाँ चलते रहो, ठीक है माता जी बताओ। हाँ माता जी थोड़ी सी नजदीक पहुंच गए, देख लो माता जी थोड़ी सी नजदीक पहुंच गए। माता जी थोड़ी नजदीक पहुंचे, कहीं सुना होगा, मैंने बहुत दफा क्लास में, जनरल क्लास में भी सुनाया है, आपके इंदौर में आया तभी भी सुनाया है, ऐसा लगता है कहीं सुनाया मैंने। माता जी थोड़ी नजदीक, लेकिन पूरा समझा नहीं है, पूरा क्लियर चाहिए ना। तो जवाब ऐसा है, बाबा ने कहा बच्चे दोनों करना है, दोनों कैसे होगा, उसको कहा मैंने, अरे तुमने अपने भाग्य बिगाड़ दिया, सेवा से भाग्य बनता, बाबा चांस देता है, अगर आपने सेवा नहीं किया आपका भाग्य बन खत्म हो गया, चांस दिया आपको, चांस नहीं बन लिया आपने, चांसलर नहीं बने, तो दोनों काम कैसे होगा, हो सकता है। तो मैंने कहा आपने एक साल के बाद पूछ रहे, उसी समय पूछना था, उस समय फोन तो नहीं था। हाँ अब गरीब साधारण व्यक्ति, हमने कहा पानी 7 बजे आता है, आप जाओ एक ड्रम लेके आओ प्लास्टिक का, हाँ कमाई करते हो, नल के नीचे ड्रम रखो, नल ऑन करो, आके बैठ जाओ, मुरली सुनते रहो 5-10 मिनट के बाद, घड़ी तो सब जगह होती है, 10 मिनट के बाद देखो ड्रम कितना भरा, आधा भरा, दूसरे दिन 15 मिनट के बाद जाओ, पानी भी भरा और आपकी मुरली भी भरी, मुरली भी सुनी, दोनों काम होता है, सकता है ना कि नहीं हो सकता, एक साथ चाहिए, समय है। तो एक ड्रम लाके रखना है, तो नल ऑन करो, 15 मिनट तो लगता है पानी भरने के लिए, एक मिनट में भरता नहीं है ना। तो उसको कहा युक्ति, कभी आपके मन में विचार आएगा, झूठ और युक्ति बाबा कहते हैं, बच्चे युक्ति से चलो, युक्ति किसको कहते हैं, तो युक्ति का भी अर्थ है, ये कौन बताता है, बाबा। अगर आप बाबा के कमरे में बैठकर बाबा से पूछो, मैं परसों सुना के गया था आपको, कोई भी समस्या हो, कोई भी बात हो, कोई दुख हो, कुछ भी हो, बाबा ने कहा मैं बैठा हूं मुझे सुनाओ, तो बाबा के कमरे में बैठो, बाबा दीदी के बहन जी कहती मुरली मिस करो, पानी भरो, अभी आप कहते हो मुरली मिस नहीं करो श्रीमत पे, तो आपका सुनो को बहन जी का सुनो, क्या करूं मैं, दुविधा है। बाबा ने कहा कोई दुविधा हो, कोई समस्या हो, कोई मुरली के पॉइंट कुछ भी समझ में नहीं आया, मैं बैठा हूं मुझे, मेरे से बात करो। उस दिन मैंने सुनाया था मूर्ति और बाबा में अंतर है, पता चला ना, कभी कोई पूछा मूर्ति रखे बैठे है, फोटो है, तो बताया था फोटो नहीं, चैतन्य बाबा है, सुनता है। तब बाबा ने कहा मैं हर सेकंड बच्चों का आवाज सुनता हूं, इसलिए बाबा आया हुआ है। उस दिन सुनाया था स्पष्ट, कहता मूर्ति के सामने बैठना और बाबा के सामने बैठने का अंतर बताया था। तब बाबा से पूछो, बाबा युक्ति बताएगा। तब कहा बाबा से अगर कनेक्शन है, तो बाबा ने कहा किसी ने कुछ भी कहा, झूठ सत्य आपको पता नहीं है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो बाबा के कमरे में बैठो। बाबा ने कहा मुझे पूछ के अगर आप कोई भी काम करते हो उसका मैं जिम्मेवार हूं, नुकसान हो या फायदा हो, तो मुझे पूछा, मेरी जिम्मेवारी है, मैं उसका निवारण करूंगा, युक्ति बताऊंगा, कुछ ना कुछ करूंगा। ऐसे अगर माता जी को कहा सब्जी का बनाओ, हाँ तब हो सकता है, समय है। माता बहन जी को पूछो, बहन जी अभी करना चाहिए कि 5-10 मिनट मुरली सुन करके फिर सब्जी काटो, हाँ सब्जी मुरली सुन के आओ फिर काट लो, नहीं अभी कुछ खाना खिलाना है किसको, अभी काट लो, हाँ अभी करो, बाद में मुरली सुनो, बैठ समय है आपके पास, वहां उसके पास समय नहीं था। अब ये भाई कहता है, बहन जी ने कहा रही इनको अभी स्टेशन छोड़ के आओ, अब ये कहता है स्टेशन छोड़ने जाओ मैं मुरली मिस हो जाती है, अब यहां भी युक्ति है। इसको बाबा ने कहा आप करो या करवाओ, यहां बैठे बैठे अगर इसका कोई दोस्त है मार्केट में, रिक्शा वाले को फोन करो, रिक्शा वाला आप आओ इनको स्टेशन छोड़ दो, नहीं तो आपका कोई दोस्त है पहचान वाला बाहर, उनको बोला आज आप सेवा करो, कल मैं आपकी जरूरत पड़े तो मैं आपको करूंगा, मदद करूंगा। आप करो या करवाओ, ऐसे नहीं, आपको ही करना चाहिए। आप नहीं कर सकते हो, दूसरों से करवाओ। बाबा की सेवा के लिए ना शब्द नहीं करो। समझ में आया? हाँ माता जी बताओ। हाँ बिल्कुल सही है। अगर सेवा अगर है, नहीं तो आप सेवा करते हुए आपके पास समय है, पहले मूली पढ़ोने तो सेवा के बाद तो जरूरी है, वो भी बाबा की सेवा है, बच्चों की सेवा। अभी यहाँ भी किचन में हमको पता है, शुरू में हम मुरली मिस होती, दादी मुरली के बाद आ करके मुरली के पॉइंट सुनाती थी और अमृत पिलाती थी। और गुरुवार के दिन में हमने आने के बाद एक साल तो गुरुवार कैसे देखा ही नहीं था शुरू में, तो दादी हम किचन में आके अमृत पिलाती थी, मुरली के पॉइंट सुनाती थी। उनकी जिम्मेवारी है, बाबा की जिम्मेवारी। आप बाबा की सेवा कर रहे हो तो बाबा, अगर आपके पास समय है बाबा कुछ ना कुछ करेगा। लेकिन दोनों भी कर सकते हो आप, हो सकता है उस समय, अभी अभी आपके है कि सेवा उस समय है, माइक लगा हुआ नहीं है, नहीं सुनते, तो पहले मुरली पढ़ो, नहीं बाद में सेवा करने के बाद में बैठ के पढ़ो, हो सकता है। जहां मार्जिन है, लेकिन उधर मार्जिन नहीं था, उसको तुरंत जाना है, नौकरी भी करना है, मुरली पढ़ने 5 मिनट बैठ नहीं सकता है, और अनपढ़ा है, मुरली लेके भी जाने सकता है, पढ़ा लिखा हुआ नहीं, अभी पढ़ी लिखी हुई माता जी नहीं, माता जी को सेवा में लगा, मुझे कौन सुनाएगा? हाँ बहन जी बैठ के या किसी को बताएंगे, इनको आप बाद में बैठ के मुरली सुनाना, क्यों सेवा कर रही है, तो कुछ प्रबंध करना पड़ेगा, है ना। तो ये हो सकता है, पहले पढ़ो बाद में पढ़ो, नहीं तो किसी के द्वारा सुन बताओ, हमको पढ़ाओ बता दो, दोनों भी काम कर, समय है तो कर सकता है। इसलिए पूछा, ये दुविधा होती है। हाँ इसके अंदर अभी एक और एक आया, और एक बात बताता हूं। बाबा कहता है धन लगाओ, फिर उसके साथ एक बाबा कहता है बच्चे श्रीमत में मन मत मिक्स होता है, दूध में पानी मिक्स कर सकते हैं, लेकिन श्रीमत में मन मत कैसे मिक्स होता है? ये इतनी सूक्ष्म चीज है, किसी को समझ में नहीं आएगा। ये श्रीमत के अंदर मन मत बाबा रोज मुरली में कहता है, बहुत दफा कहता है, पानी में दूध में पानी मिला सकते हो, लेकिन श्रीमत के अंदर मन मत कैसे मिल सकता है? उसका एक एग्जाम्पल बताता हूं, ठीक है, अभी आप जवाब दे देना। तो अभी बाबा ने मुरली में कहा, अभी भाई बैठा है, मुरली बाबा चलाता है, बाबा ने मुरली सुना है, बच्चे तन से सेवा करो, मन से करो, धन से करो, बाबा कहता है मुरली में। अभी हम मुरली सुनते सुनते बाबा ने कहा बच्चे तन से सेवा करो, मन में सोच रहा बाबा आज तन से सेवा नहीं कर सकता है, नौकरी में जाना है, छुट्टी नहीं मिलेगा। फिर बाबा ने कहा बच्चे मन से करो, बाबा तन जहां लगे वहां मन भी तो लगेगा ना, आज मन से भी नहीं कर सकता है। फिर बाबा ने तीसरा शब्द यूज किया धन से करो, तो भाई जी ने कहा हाँ बाबा धन से कर सकता है। तो देखा जेब में 100 रुपया है, बाबा धन से सेवा कर सकता है आज, तो देखा क्या करूं, 100 रुपया है, ऐसे चारों तरफ देखा, सब लोग खुर्ची में बैठे, थोड़े माताएं भाई जमीन पर बैठे, खुर्ची कमी है, तो सीधा मार्केट में गया, 100 रुपया में एक चेयर आ गई, लाके सेंटर में रख दिया, तो ये सेवा हो गया ना। तन से तो नहीं कर सकते आज, मन से नहीं कर सकते, धन से किया चलेगा नहीं चलेगा? अरे मन मत कहां हो गया, मुरली में बाबा ने कहा था, मुरली श्रीमत है ना, श्रीमत में बाबा ने कहा तन से करो, तन से नहीं कर सकते आज, मन से करो नहीं कर सकते, धन से करो, तीनों में से एक करो, तो श्रीमत मुरली नहीं। हाँ तो फिर श्रीमत के मुरली के अनुसार नहीं चलना है, बहन जी को पूछ के करना है, ऐसा हो गया ना, श्रीमत तो ये हो गया ना, फिर तो मुरली नहीं है। अब बताओ, हाँ भाई जी क्या कह रहे हैं, लेकिन जो जरूरी है उसको लगा, उसने अपने सोचा कि क्या करूं मैं, सेवा 100 रुपए में क्या आ सकता है, मनमत हो गई, श्रीमत नहीं है, माताएं बताओ, लेकिन उसको लगा मई से बाबा ने इसको कहा ना, मुरली तो हमको सुनाया, बच्चे तन से सेवा करो, मन से करो, धन से करो, है ना। अगर ऐसे नहीं बाबा ने कहना चाहता, बच्चे तन से मन से बहन जी को पूछ के करो, ये तो बाबा ने बताया नहीं। अगर बाबा मुरली में सुनाए तन से मन से बहन जी को पूछ के करो, ये तो नहीं बोला बाबा ने। बाबा ने मुरली सुनते है, बाबा की मुरली श्रीमत है, हमने श्रीमत सुन के करेंगे ना। अच्छा पक्का, इंदौर वाले तो पक्का है। हाँ ये जवाब एक तो तीर लग गया, बाबा तो सेवा करो, तन मन धन से सेवा करो, तो यहां श्रीमत में मन मत कैसे मिक्स होता है, ये किसी को समझ में नहीं आता है। बाबा ने श्रीमत कहा, मुरली के अनुसार हम सेवा करते हैं, हाँ मुरली सुनकर आप बाहर कुछ कर सकते हो, लेकिन इस कॉम्प्लेक्स के अंदर यहां की व्यवस्था देखने वाली कोई निमित्त आत्मा है, उसको यहां अगर कुछ करना चाहते हो, यहां निमित्त आत्मा को पूछ के कर्म करना चाहिए, तब एक का पदम गुना जमा होगा। नहीं तो एक का सेवा तो किया आपने, एक का एक गुना जमा होगा। और एक उदाहरण इसके साथ देता हूं। देखो ये दोनों भाई है, दोनों भाइयों के पास 100-100 रुपए नोट है। दोनों भाई एक साथ बैंक में गए। दोनों भाइयों ने बैंक वालों को कहा, भाई जी मेरा 100 रुपया बैंक में रख दो। और एक भाई ने भी कहा, मेरा 100 रुपया एक साल के लिए रख देना। एक साल के बाद लाने गए, इनको एक से 10 रुपए दिया और इनको 100 रुपए दिया। अब ये दोनों उससे लड़ाई करने लगे, मैंने भी 100 रुपए दिया था, इसने भी 100 रुपए दिया, इनको 110 रुपए दिया, क्यों? हाँ, दोनों ने 100 रुपए दिए, एक साथ गए, एक ही बैंक में दिया, अंतर क्यों? क्यों? उसने भी 100 रुपए दिया ना। हाँ, ना ना, एक शब्द का अंतर, एक शब्द श्रीमत, इसलिए कहा एक शब्द का अंतर क्या से क्या करता है। तो इसने 100 रुपया बैंक में रखो, करंट अकाउंट हो गया, सेविंग अकाउंट, कोई इंटरेस्ट नहीं। इसने एक शब्द ऐड किया कि एक साल के लिए फिक्स डिपॉजिट हो गया, 10% इंटरेस्ट हो गया। कभी भंडारे में पैसे डालते हो? बाबा बहन जी ने कहा था सेवा के लिए डाल रहे हो, तो बहन जी देंगे रिटर्न। बाबा ने कहा मुझे याद करके अगर कुछ करते हो तो मैंने आपको कहा एक का पदम गुना रिटर्न देता हूं। तो हर कर्म सेंटर में कहीं भी कोई भी सेवा करते हो, अगर बाबा ने कहा श्रीमत के अनुसार, देखना कभी भी मुरली में देखना श्रीमत बाबा लगा देता है, श्रीमत के अनुसार सेवा करते, नहीं मुझे अच्छा लग रहा है। योग भी, सारी दुनिया योग करती है, सारी दुनिया ने गला काट के दिया, तपस्या व्रत क्या क्या करते हैं। विश्वामित्र ने इतनी तपस्या किया तो भी क्रोध को जीत नहीं सका है। बाबा यहां कहता है क्या श्रीमत देता है योग करने के लिए, यहां भी श्रीमत है, बच्चे आत्मा समझ फिर मुझे याद करो। नहीं मुझे ऐसे योग करने में बहुत अच्छा लगा, मेरे ऊपर बहुत सारी किरणें आ रहे हैं, मैं बहुत अच्छा हूं, मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। हाँ हो रहा है, विकर्म विनाश नहीं हो रहा है, इसलिए क्रोध अभी तक नहीं जा रहा है। तो योग के लिए भी श्रीमत है, मुरली सुनने के लिए श्रीमत है। डॉक्टर ने कहा ये गोली है सिर दर्द की, ये सवेरे खाना चाहिए, ये शाम को खाना है। अरे सवेरे भूल गया, शाम को दोनों गोली लेते हैं, जल्दी ठीक हो जाएगा। सवेरे भूल गया, शाम को दोनों ले लो एक साथ, जल्दी हो जाएगा ना। हाँ, इसलिए कहा बहुत सारे श्रीमत के अंदर मनमत मिक्स होता है। मुझे अच्छा लग रहा है, हाँ मुझे अच्छा लग रहा है तो आपको अच्छा लग रहा है उतना मिलेगा। अगर एक का पदम गुना चाहते हो, विधि, हर चीज की विधि है, विधि के बिगत। तब बाबा ने आज कहा एक एक शब्द आज यूज किया, बच्चे कभी भी कायदे को तोड़ो नहीं, कायदा तो कायदा है। इसलिए रामायण में एक एग्जाम्पल आता है, शास्त्रों में भी है ये, राम को सीता को लाने के लिए लंका जाना था, तो राम श्री रामेश्वर में तपस्या करने बैठ गया कि समुद्र देवता को कहा मुझे रास्ता दे दो, कुछ भी नहीं हुआ, पानी आके उसको बहके लेके गया, तो क्रोधित हो जाता है एकदम, तो बाण छोड़ने तैयार होता है। तब समुद्र देवता खड़ा होता है, हे विधाता ऐसे कोई विधान लिखा नहीं है, कोई भी आओ समुद्र सुखाओ। लॉ मेकर कैनॉट ब्रेक द लॉ, कायदा बनाने वाले को उसको भी कायदे पर चलना है, ऐसे नहीं कायदा औरों के लिए मेरे लिए नहीं है, कायदा बनाने वाले के भी कायदे पर चलना है। आप भगवान हो गए तो क्या हो गया? तब बाबा देखना रोज कहता है, बच्चे मुझे भी ड्रामा प्लान अनुसार ही कायदे जो चाहे मैं नहीं कर सकता हूं, मेरा भी पार्ट है, बाबा ऐसे करो, बाबा ऐसे करो, बाप भगवान जो चाहे। ये भक्ति वाला शब्द है, तो भक्ति में भी सुनाया, आप भगवान हो गया तो आपको भी कायदे अनुसार चलना है, आप मेरे पर बाण नहीं छोड़ सकते हो, अत्याचार नहीं कर सकते हो। तब समुद्र देवता ने पूछा, राम ने पूछा, मैं क्या करूं, मुझे उपाय बता। हाँ, आप मेरे से मदद मांगो, मैं आपको मदद कर सकता हूं। अगर आपका नाम लेकर कोई पत्थर डालेगा तो मैं तैराऊंगा, डुबाऊंगा नहीं। तब बाबा ने कहा, बच्चे हिम्मत का एक कदम रखो, मदद बाबा करेगा। लेकिन नहीं बाबा, मैं एक कदम नहीं रखता, पूरा मदद आप ही करो, ये चाहते हम। तब बाबा ने यहां भी कहा, बच्चे हिम्मत का एक कदम रखो, बाबा हजार गुना मदद करने के लिए तैयार है, लेकिन हिम्मत आपको करनी। वहां भी कहा, शास्त्रों में भी है, एक राम का नाम लेकर एक पत्थर डालो, मैं तैराऊंगा, मदद करूंगा, लेकिन मेरे पर आप अधिकार नहीं चला सकते हो। भगवान हो गया तो उसको भी विधि है, इसलिए कहा लॉ मेकर कैनॉट ब्रेक द लॉ, कायदा बनाने वालों को भी कायदे पर चलना है। ऐसे नहीं औरों के लिए कायदा मेरे लिए नहीं है, कायदा तो कायदा सबके लिए है। तब बाबा ने आज का बच्चे कभी भी लॉ को तोड़ो नहीं, कायदे विरुद्ध कोई भी काम नहीं करो, करेंगे तो स्वयं श्रापित हो जाएंगे, है ना। तो कैसे हम कर्म करते हैं, सेवा भी कर रहे हैं, मुझे अच्छा लग रहा है, लेकिन श्री मत देख लो। तब बाबा ने कहा कोई दुनिया में आज देखो मीरा पवित्र थी, सत्युग में आएंगी नहीं, पवित्र भी बाबा ने श्री मत के अनुसार पवित्र रहो। तो पवित्रता की भी डेफिनेशन है, प्रजा के लिए पवित्रता अलग है, राजा के लिए पवित्रता अलग है, रॉयल फैमिली के लिए अलग है, पुरुषार्थ में भी तीन प्रकार है, बाबा के बच्चों में भी तीन प्रकार है, नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री, तीन प्रकार है। पुरुषार्थ भी एक है, मैं पुरुषार्थी हूं, ग्रोथ करना मेरा ड्रामा में पार्ट है, मुझे गुस्सा आता है मैं क्या करूं, मेरा पार्ट ही ऐसा है, मैं निमित्त आत्मा हूं, मैं बाबा ने कहा करण करावन बाबा है, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, ऐसे करने वाले भी है निमित्त, उसको कहा पैदल जाने वाले। दूसरा है एक बार गुस्सा किया था, दोबारा गुस्सा नहीं करना चाहिए, उसको तीव्र पुरुषार्थी कहा। और एक है श्रेष्ठ श्रेष्ठ पुरुषार्थ, हाँ कुछ भूल की थी उसको याद भी नहीं, स्मृति को भी मिटा देता है, कोई याद भी नहीं है, तीव्र पुरुषार्थ श्रेष्ठ श्रेष्ठ। तीनों प्रकार है, एक जो समझ जाए ड्रामा फिक्स है, करण करावन बाबा करा रहा है, गुस्सा करना मेरा कर्म फल ऐसा है, कर्म ही ऐसा है, ऐसे करके जो चलते हैं अपने को साधारण समझ के चल रहे हैं। तब बाबा ने कहा बच्चे तीव्र पुरुषार्थी बनो, एक बार भूल हुई दोबारा नहीं होनी है। तो तीव्र पुरुषार्थ का हर चीज के एक्सप्लेनेशन दिया। कभी कभी संकल्प आता है मैंने 10 लाख रुपया दिया तो मुझे बाबा मेरे तन ठीक करो, मुझे बीमारी ठीक करो, बच्चे नहीं, तन सेवा में लगाएंगे, मैं कुछ नहीं देता हूं, विधि बताता हूं। यूनिवर्स सृष्टि के अंदर नियम है, गेहूं का बीज बोलो तो गेहूं ही उगेगा, ऐसा नहीं था गेहूं का बीज बोलो चावल उग जाएगा, ये नहीं है, कायदा नहीं है। तो हर चीज कभी कभी हम समझते मैं योग करता हूं, ज्ञान सुनता हूं, सेवा मेरे से नहीं होती है, किसको बताएंगे आप, तकदीर को बताना है, जो करेगा वो पाएगा। भगवान बाबा ने कहा मेरे पास कुछ भी नहीं, मैं सुख नहीं देता हूं शांति, मेरे पास कुछ नहीं, विधि बताता हूं, ये करेंगे तो ये मिलेगा, तब उनका नाम है भाग्य विधाता है। बच्चे भाग्य बनाने की विधि बताता हूं, ये तन इस यज्ञ की सेवा में लगाओ, कितना लगाना चाहिए वो भी कब कितना घंटा करना चाहिए, जितना आप कर सकते, आपको कितना चाहिए, एक जन्म के लिए चाहिए, एक मिनट अगर यज्ञ की सेवा करते हो एक जन्म के लिए निरोगी काया, कितने जन्म के लिए चाहिए, तब का तकदीर आपके हाथ में है। तन कहां लगा रहे, 24 घंटा आपके पास है, किसकी सेवा में लगा रहे हो, इनकी फैक्ट्री में काम करो ये नौक पैसा देगा, तो ये जहां तन लगा रहे हो तब भगवान इस यज्ञ की सेवा करो, समझ में आया। तभी ऐसा नहीं था मैं तन दे धन दे रहा हूं, तन की सेवा नहीं किया तो मेरे से नहीं होता है, किसको बताएंगे, विधान ऐसा है, ये सृष्टि यूनिवर्सल लॉ है। अभी देखो और एक एग्जांपल, धन कहां लगाना चाहिए, अभी भी आप देख लो कभी एक बैंक वाला 10% इंटरेस्ट देता है, एक बैंक वाला 5% इंटरेस्ट देता है, पैसे कहां रखेंगे, 10% में रखेंगे ना। अभी भाई जी ने मुरली सुनी तो बाबा ने कहा तो देखा इनके घर के बाजू में बहुत अच्छा एक मंदिर बन रहा है, 10 लाख लोग रोज दर्शन करने आएंगे, और एक जगह बाजू में सेंटर भी खुल रहा है, सेंटर में 2-3 माताएं आएंगी, 2-3 भाई आते, देखा उसने यहां तो 100 रुपया दिया तो बस, अरे मेरा धन का उपयोग 10 लाख लोगों को होगा तो मंदिर में लगाना चाहिए ना। देखो ब्रह्मा सफेद कपड़े वाले सही जवाब नहीं देंगे, रंगीन कपड़े वाले माताजी सही जवाब देंगे, माताजी आप बताओ, रंगीन सफेद कपड़े वाले कहेंगे हमारे बाबा कहेंगे ना, आप सही जवाब सकते हो, आप न्यूट्रल होकर जवाब दे दो, अगर आपके घर के बाजू में एक मंदिर खुल रहा है तो वो जो 10,000 लोग आएंगे दर्शन करने के लिए, तो वहां अगर धन लगाओ तो 10,000 लोगों को फायदा होगा ना। यहां सेंटर में 2-4 माताएं 2-3 भाई आते हैं, 100-200 रुपया लगाए तो बस, तो धन कहां लगा, बैंक में इंटरेस्ट जो ज्यादा दे रहा है वहां लगाएंगे ना, अभी आप बताओ, तो वहां एक जन्म कैसे, वहां इतने लोग एक जन्म में ही 10,000 लोग दर्शन करेंगे, 10,000 लोगों को फायदा मिलेगा, यहां तो 2-4 लोगों को फायदा मिलेगा। माताजी भी अपना कुछ सुना रहे, रंगीन कपड़े वाले सही जवाब देते, हमने कहा रंगीन देखा तो माताजी और बताओ कोई जवाब है किसी के पास, कहां लगाना चाहिए? निस्वार्थ अगर आपको कोई बाहर वाला मिलेगा, बाहर वाला कोई आपको पूछेगा, आपके बच्चे ज्ञान में चले, पापा आपके तो सेंटर में थोड़े से लोग आते हैं, तो यहां इतना बड़ा मंदिर लग रहा है, यहां तो धन लगाना चाहिए, तो आप क्या जाएंगे, बच्चों को भी कैसे समझाएंगे? जी कैसे मिलेगा सदा काल, कैसे मिलेगा? वो भी प्रूफ करो ना, ऐसे नहीं होगा ना। जवाब ठीक नहीं लगा, और कुछ जवाब दे दो। कहां दिखाए, यहां भी चीज जड़ मूर्ति है, वहां भी पंडित जी है, यहां भी बहन जी सुनीता बहन जी, पंडित जी मुरली सुनाता, बाबा थोड़ी सुनाता है। अभी यहां भी अगर वहां भी पंडित जी सुनाता है, कैसे कहेंगे भगवान खुद आया है ना? कुछ चीज अच्छी बताओ। ये आप कहते हो, वो भी कहते हैं हमको 10,000 लोग दर्शन करने आ रहे। जवाब, दोनों को संतुष्ट होना, न्यूट्रल होना चाहिए। साक्षी होके बाबा कहते, देख लो किसी ने पूछा तो उसको जवाब देना चाहिए। मंदिर में 10,000 लोग जरूर आएंगे, आपका धन जरूर 10,000 लोगों को फायदा मिलेगा। कभी अगर जो मंदिर में आता है, हाथ जोड़ता है, नारियल केला रखता है, पूजा करता है, और बाहर जाने के बाद शराब भी पीता है, झगड़ा भी करता है, गुस्सा भी करता है, तो उसने मंदिर में आके क्या कमाई किया? इस खेती में जो बीज बोया उसे उगेगा कुछ तो मिलेगा उसको। हाँ, अभी आप कहेंगे सेंटर में आया, सेंटर में माता जी रोज आती है, आप पूछना उनको, एक साल हो गया बहुत गुस्सा करती थी, अभी 5% गुस्सा कम किया, रोज योग करती, कुछ कमाई कर रही है, उस कमाई का 1% मिलेगा। मंदिर में जो गया उसने क्या कमाई किया? कुछ कमाई किया, कमाई करके तो मिलेगा ना। इस बैंक में पैसा रख दो, अगर उसका कुछ बिजनेस ही नहीं है, बैंक वाला भी क्या करता है, ये 100 रुपया आपका औरों को लोन में देता है, उससे 20 रुपया लेता है, 10 रुपया आपको देता है, 10 रुपया वो रखता है। अगर इस खेती में जो बीज बोया उधर कुछ उगा ही नहीं, मंदिर में जो आपने, अगर कोई मंदिर में आके पूजा करता है और क्रोध छोड़ के जाता है, कहता है भगवान मैं आज के बाद दारू नहीं पीऊंगा, गुस्सा नहीं करूंगा, अगर कुछ परिवर्तन करता है तो उस पर कुछ उगा, कुछ हुआ, उसका फायदा उसको मिलेगा। तो यहां मंदिर में हाथ जोड़ा, पूजा किया, सब कुछ किया, उसने क्या किया? कुछ छोड़ा, परिवर्तन कुछ किया? कुछ भी नहीं हुआ। हाँ, यहां माताएं बहने कोई भी आती है, आप भी अपने आप से पूछो, मुरली सुनने आते हो, परिवर्तन देख लो अपने पास, योग लगाते हो, कुछ तो कमाई कर रहे हो। खेती में एक ही दाना, एक दाने का टुकड़ा दाना तो मिलेगा, कुछ कमाई हो रही है, तो धन वहां लगाओ। ये न्यूट्रल जवाब देना चाहिए, जहां धन लगाओ जहां कमाई होनी चाहिए, बीज वहां बोलो वहां कुछ उगना चाहिए, सूखी जमीन पर बीज बोलो तो वहां उगेगा। तब बाबा ने कहा दान करते समय पात्र को देख के दान करो। हमने दान किया, हाँ इसके ऊपर भी एग्जाम्पल, दान करते समय पात्र को कैसे देना चाहिए उसको भी गुह्य गति जानना चाहिए। देखो भीष्म पितामह को अंत में तीर की शैया पर सुलाया, उन्होंने श्री कृष्ण से पूछा कि बचपन से आज तक मैंने कभी भी किसी को दुख नहीं दिया, तो मुझे क्यों दुख मिला? तब उन्होंने कहा बचपन में आप घोड़े रथ चलाते थे, घोड़े गाड़ी, रथ के चक्के के नीचे सांप आया, लेकिन आपका मन स्वच्छ था कि हिंसा नहीं करनी चाहिए, तुरंत रथ को रोका और सांप को उठा के बाजू में किया। रास्ते के बाजू में कांटे के झाड़ होते हैं, उसका लक्ष्य क्या था? हिंसा नहीं करनी चाहिए, इतना था। उठा के बाजू में क्या, कहां गिरा वो? जितने कांटे उसको लगे थे उतने कांटे आज आपको लग रहे हैं। रस्ते पर चलते गरीब, आपने 10 रुपया दिया, गरीब है, उसने जाके शराब पिया, तंबाकू खाया, तब कहा पात्र को देख के दान दीजिए, कर्मों की गति गुह्य है। धन भी कहां लगाना चाहिए, गति जानना चाहिए, इसलिए हमें पता नहीं चलता है, हम वर्तमान देखते हैं। तब बाबा ने कहा जो आध्यात्मिक व्यक्ति है, आत्मा का ज्ञान है, आत्मा को चारों दिशा दिखाई देती है, शरीर समझते हो अपने को, सिर्फ वर्तमान देखते हो, वन डायमेंशन, सिर्फ वर्तमान देखते हो, तब बाबा ने जो ज्ञानी तो आत्मा, आध्यात्मिक ज्ञान के बिगर गति सदगति नहीं है। समझ में आया? तब और एक जानना चाहिए आपको आगे जाके, लेकिन समय हो गया। जब सत्संग में कहीं भी जाओ, सत्संग भी किसको कहते हैं? कहीं भी जाओ सत्संग है, हाँ सत्संग भी उसको कहते हैं, जहां कम से कम 3 प्रकार की सत्यता होनी चाहिए, तब उसका नाम है सत्संग, उससे सदगति होती है। रामायण चल रहा है, गीता का प्रवचन चल रहा है, कहीं भी जाओ ना सत्संग है, चलेगा? हाँ सत्संग भी किसको कहते हैं? हर चीज की विधि विधान जानना चाहिए। तन कहां लगाना चाहिए, मन धन कहां लगा, मन की तो परसों सुना था इसलिए रिपीट नहीं कर रहा हूं। मन कहां लगाना चाहिए, किधर लगाया, कहां लगाएंगे, हाँ दो सुनाया था, एक मुरली के पॉइंट आपके जेब में हो, मुरली एक पढ़ो, औरों को भी मुरली का दान दे दो। और योग में बैठकर बैठते हो तो मन तन मन और बुद्धि लगती है, जितने बाबा को याद करते हो, मुरली का याद करते हो, ट्रैफिक कंट्रोल हुआ, किसको याद किया, गीत सुना कि क्या किया, क्या किया, हाँ उस समय ट्रैफिक कंट्रोल, बाबा ने मुझे क्या काम कहा था, मुरली को याद करो, ट्रैफिक दुनिया की बातों का ट्रैफिक को बंद करो, अपना ट्रैफिक शुभ विचार शुरू करो। शुभ विचार कहां से लाएंगे, रोज मुरली सुनाता है बाबा। अगर याद नहीं है तब कहा जेब में रखो, एक हफ्ता काम करो, फिर आदत बनेंगी। हमारी बुद्धि आदत से चलती है, हैबिट डालना पड़ता है। तो ये तीन काम करना चाहिए, तन कहां लगाना चाहिए, मन कहां लगाना चाहिए, धन कहां लगाना चाहिए। ऐसा नहीं करना मैं बहुत योग करता हूं तन की बीमारी चली जानी चाहिए, नहीं मैंने बहुत धन लगाया है तो मेरा ठीक होना चाहिए, नहीं। जो तीनों की अलग अलग गतिविधियां है, हेल्थ भी चाहिए, वेल्थ भी चाहिए, हैप्पीनेस भी चाहिए। तन भी सेवा में लगाओ, मन भी लगाओ, धन भी लगाओ, जितना जो करेगी, विधान है, इस विधान को जानना चाहिए। मंजूर, समझ में आया, दुविधा तो नहीं, हाँ। मुरली मन कहां लगा, जो पहले सुनाया था अभी भी सुनाया, ये दो जानना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि अचानक सेंटर में सेवा होती है तो कहेंगे अपना तकदीर बिगाड़ो, बाबा ने कहा बच्चे तुम्हारे मुख से कभी भी ना शब्द नहीं आना चाहिए, हाँ जी करो या करवाओ, ऐसे नहीं आपको ही करना, किसी कारण आप नहीं कर सकते हो, ना शब्द नहीं करो, क्योंकि ये भगवान की सेवा है, किसी व्यक्ति की नहीं। तो ना शब्द नहीं करते कि अपना भाग्य बिगड़ जाएगा, क्योंकि बाबा ये कैसे भाग्य कैसे बनाता है, इसलिए उसका नाम है भाग्य विधाता है, भाग्य बनाने की विधि देता है। आपको एक लास्ट बताता हूं, देखो आप कहेंगे मैं भी यहां कैसे बैठा हूं, अपने आप नहीं बैठा हूं, अपने आप तक आप नीचे, मैं भी नीचे बैठना चाहता, ये अपने आप ने सेवा का फल है। आज से 40 साल पहले मैं बॉम्बे में था, तब बॉम्बे में ऐसे दो तीन हमारे फ्लैट थे, एक जगह पर ट्रेन का आवाज आता था, एक जगह पर आता था, मैं एक जगह पर पता था यहां दो तीन दिन क्लास करने यहां आऊंगा, जमीन पर बैठते थे, कारपेट लगा हुआ था, अगर एक घंटा बैठो तो पाव दर्द करते थे, तो क्या करो, तन ठीक होगा तो मन लगेगा ना, तो मैं रोज दो दो नैपकिन ले आता था, पाव के नीचे डाल के बैठ जाता था। लेकिन मेरे बाजू में ये भाई भी बैठा है, लेकिन छोटा सा जगह, एक दूसरे को लगा के बैठते हैं, अब इसको भी पाव दर्द करता है, दो मिनट के बाद मैं अच्छी तरह से योग करके थोड़ा सा ऊपर जाता हूं, दो मिनट के बाद मुझे हिलाता है, नीचे लाता है। अब मैं इसके लिए क्या करूं, मैं अपना तो प्रबंध किया, दो दो नैपकिन ला के आराम से बैठा, अब ये मुझे योग करना नहीं देता है, क्या करो। फिर मुझे पता था मैं दो तीन दिन ही यहां आने वाला हूं, फिर भी हिम्मत किया कुछ करना चाहिए। तो छोटी बहन मुरली सुना रहे, बहन जी एक सेवा करना था बताओ, हमने कहा कितना भी खर्चा हो आप यहां गद्दी डालो, फॉर्म डालो। उन्होंने एक दो तीन दिन के अंदर फटाफट फॉर्म डाल दिया। फिर तीसरे दिन मुझे कहा भाई जी आपको दीदी मिलना चाहती, हमने कहा नहीं, 8 बज गया, मैं चला गया। दूसरे दिन फिर कहा, हमने कहा कुछ काम है तो बताओ, तो बड़ी बहन जी आई, कहते आप एक्यूरेट योग में आके बैठते हो, आपके अंदर सेवा भाव है, लेकिन आपको मधुबन चलना चाहिए। हमने कहा नहीं जा सकता, मैं बहुत बिजी हूं, ना करके गया तो बहुत बहुत बिजी था। लेकिन दूसरे दिन आया कि दो रोटी कमाने के लिए मैं जीवन में आया हूं, एक कुत्ता भी खाता है, तो भगवान चाहिए कि दो रोटी चाहिए, तो मैंने कहा भगवान चाहिए। तो तुरंत दूसरे दिन आके कहा मैं आऊंगा जाऊंगा, उन्होंने कहा एक बहन जी जाने वाली है आप उनके साथ जो 1978 में, तब यहां कोई नहीं थे, छोटे हॉल था, मेडिटेशन हॉल भी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ था, तो कुछ भी नहीं था, तो भी सेवा का कोई जरूरत नहीं थी, तो भी मुझे भेजा और मैं 8 महीना रहा पहली दफा ही। तो निस्वार्थ भाव से अगर आप कोई भी सेवा करते हो, भगवान लेता नहीं, एक का पदम गुना रिटर्न देता है। नहीं तो अगर उस समय मैं नहीं आता था ना, बहन जी कभी मधुबन में किसी को भेजते नहीं उस समय, ये 1978 की बात है, और कोई यहां रुक भी नहीं सकता है, और नॉन सीजन कोई सीजन बाबा आ रहा है ऐसा भी कुछ नहीं था। तो उनको लगा कि ऐसे व्यक्ति को मधुबन जाना चाहिए, तो भी मना किया मैंने पहले दिन, दूसरे दिन लगा नहीं कुछ भी हो जाना चाहिए, 2 दिन के लिए जाऊंगा। 2 दिन के लिए क्या आया, 8 महीना रहा। भगवान कैसे भाग्य बनाता है, विधि है ये। तब कहा भाग्य विधाता, कभी भी किसी प्रकार की सेवा कहीं भी मिले ना शब्द ब्राह्मणों के मुख से निकलना नहीं। आप करो, नहीं कर सकते हो, करवाओ, ना शब्द नहीं, मेरे से नहीं होता है, नहीं करवाओ, भाग्य चला गया। समझ में आया? ठीक है, ओम शांति। एक पहले जहां भी सत्संग में जाते हो वहां पहले आते ही आत्मा समझ के बैठो, कहते हैं। उस चर्च में जाओ, मस्जिद में जाओ, कहीं भी जाओ, वहां आत्मा समझो समझ के बैठो, कहते हैं नहीं। जहां आत्मा की, आत्मा की सदगति, शरीर की तो गति नहीं होंगे ना, काले को गोरा तो नहीं करेंगे ना, आत्मा की गति सदगति है, आत्मा समझ, आत्मा सत्य है। तो जहां आत्मा समझ के देखो, यहां आते ही क्लास शुरू होने से पहले पहले गीत बजा, पहले योग करो का, पहले क्लास नहीं शुरू किया, तब इसको एक सत्य है। दूसरा, यहां बैठ के किसको याद कर रहे हो आप? एक निराकार भगवान सच्चित आनंद स्वरूप, कोई गुरु को, कोई शास्त्र को, और किसी को, महात्मा को, किसी को याद नहीं करते हो, एक निराकार सच्चित आनंद स्वरूप है वो, गॉड इज ट्रुथ। उसको, उसने कहा मैं पतित को पावन करता हूं। किसकी वाणी सुनते हो? किसी की सुनते हो? एक निराकार के वाणी सुनते हो, उससे सदगति। ये तीनों सत्य अगर कहीं भी मिलता है उसका नाम है सत्संग, उससे सदगति होती है। इसमें से एक है, दो नहीं है, दस सदगति नहीं होती है, सिर्फ ज्ञान सुनने से नहीं, ये तीनों सत्य चाहिए। प्योर दूध किसको कहते हो? हर चीज का मापदंड है, थर्मामीटर बनाया है, बताता है कितना पानी कितना दूध है। आप कहेंगे मैं रोज क्लास कर रहा हूं, रोज सत्संग में जाता हूं, लोग कहेंगे, बहुत लोग, अरे आपके पास भी उधर भी, उधर भी जाते हैं हम, उधर भी ज्ञान सुनते हैं। तो सत्संग किसको कहते हैं? जिससे तीनों सत्यता है, तो उसको, उससे पतितात्मा क्या होगा? सदगति होंगी, दुर्गति, पाप मिटेगा, ये स्पष्टीकरण चाहिए। नहीं तो क्योंकि हम भी आश्रम में जाते हैं, है ना। और बताओ बहन जी ने कुछ बताया, चश्मा पहनना पड़ेगा, बताओ क्या लिखा, क्या लिखा? अभी 5 मिनट योग भी करना है, हाँ ये भी बताया था, झूठ और युक्ति है, ये बताना, याद रखना। युक्ति उसको कहते हैं कि युक्ति सभी लोग यूज नहीं कर सकते हैं, जिसके अंदर परखने की शक्ति है वही युक्ति यूज कर सकता है। अगर एक एग्जांपल देता हूं, ये भाई जी आया मेरे साथ, रोज रहता है, बैठता है, कभी रामनाथ भाई जो भी मांगा तो दे देता है। तो मुझे पता, एक भाई आया, एक भाई ने कहा मेरे पास पेन था, भाई जी पेन दे दो। नहीं, ये मेरे पेन नहीं, मैं दूसरे का है, ऐसे मैंने बोला। ये कह दो, वो जाने के बाद कहने का, भाई जी आज आपने झूठ बोला। तो क्यों? आपका पेन है, आपने कहा मेरा नहीं है। हाँ, मैंने उसको देखा, उसके हाथ में पेपर भी नहीं था, पेन भी नहीं था, लिखने का कुछ नहीं था, ऐसे पेन मांग रहा था। तो मैंने परखना चाहिए, परखने के बगैर कोई नहीं कर सकता ये काम, तो उसको परखना चाहिए, परखने की शक्ति चाहिए। तो इसको लिखना है, कुछ काम है पहने का, इसकी आदत है, कुछ भी मांग ले दे देता है। तो परखने वाला व्यक्ति ही झूठ उसको कहा, सत्य झूठ युक्ति उसको कहा, मेरे बोल या कर्मों से किसी को दुख और नुकसान नहीं होना चाहिए, उसका नाम है युक्ति। आपके बोल या कर्मों से किसी को दुख नहीं होना चाहिए, नुकसान नहीं होना चाहिए, ये दोनों अगर होते हैं उसका नाम युक्ति है। मेरे बोल या कर्मों से किसी को दुख होता है, नुकसान होता है, तो ये झूठ, यस झूठ हो गया, दुख मिल गया। युक्ति का डेफिनेशन, युक्ति किसको कहे? और ये सभी नहीं कर सकते, क्यों? परखने की शक्ति चाहिए। तब बाबा ने कहा योगी तो आत्मा, अगर परखने की शक्ति है, बाबा ने 8 शक्ति बताया, शक्ति का उपयोग करना है, तो व्यक्ति को परख लो तभी आप ये कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया? और क्या सुनाया?
एक सवाल आया है, अगर 15 साल 20 साल 25 साल वाली पुरानी माताएं हैं, अगर हम उनको कहते हैं सफेद ड्रेस पहनो, तो बोलती हैं नहीं, इससे तो बल्कि ड्रेस सर्विस हो जाती है, क्या हाँ, करना चाहिए?
हाँ, बाबा ने कहा कि बच्चे चलेगा, बाबा ने कभी नहीं बोला सफेद ड्रेस पहनना ही चाहिए, ये स्थूल नहीं है, फिर भी एक यूनिफॉर्म एक अच्छा लगता है। आपको देखो सफेद कपड़े पहने नीचे बैठो, नहीं काला लग जाएगा, ध्यान रहता है। रंगीन कपड़े पहने कहीं भी बैठो, कुछ लगेगा तो चलेगा, दिखाई नहीं देता है। तो एक अटेंशन अंदर भी है और एक बाहर भी है। अंदर के लिए मैंने कल परसों कहा था, एक शब्द याद रखना और कुछ नहीं चाहिए, कि मैं आत्मा इस शरीर में जन्म लिया, अंतिम श्वास तक इस शरीर के द्वारा जो भी कर्म करता हूं मेरे अंदर रिकॉर्ड हो रहा है। देयर इज नो एक्सक्यूज ऑफ इग्नोरेंस ऑफ लॉ ऑफ एक्शन। हर सेकंड मैंने शरीर के द्वारा जो भी कर्म किया मेरे अंदर रिकॉर्ड हो रहा है, इसका फल मुझे ही भोगना पड़ेगा, कोई कुछ नहीं कर सकता। ये एक शब्द अगर याद है, ऐसे शरीर के सफेद कपड़े बाबा ने भी इसलिए रखा कि ध्यान रहे कि कपड़े काले नहीं होना चाहिए, तो अपने आप को शरीर को भी बचाएगा अपने को भी बचाएगा। लेकिन फिर भी अगर दुनिया में राजस्थान में ऐसा है, राजस्थान में कहते हैं कि नहीं रंगीन सफेद कपड़ा पहना अच्छा नहीं मानते हैं, ठीक है रंगीन पहनो को अर्जन नहीं चलेगा, बाबा ने कभी नहीं कहा आपको सफेद पहनना ही चाहिए, हाँ रंगीन पहनो, लेकिन हाँ कोई भी राजस्थान, अभी तो राजस्थान में है ना, इंदौर में है, कहीं भी राजस्थान के माताएं बाहर रहती है, फिर भी एक सॉल्यूशन दादी बताती थी। दादी कहती थी कभी रंगीन कपड़े काले पहन के आ रहे हो, कम से कम सफेद शाल देते थे सौगात में, कम से कम क्लास में आते हो सफेद शाल तो ओढ़ के आ जाओ, अंदर का रंगीन है को अर्जा नहीं। संसार में रहते हैं ना हम, सन्यासी तो नहीं है, संसार में रहते हैं तो संसार के अनुसार चलना पड़ता है। पहले प्रेफरेंस सफेद पहन के आओ, अगर ऐसे हो सकता है सेंटर में आओ कपड़े निकाल के रखो पहनो, लेके आओ उधर पहनो, ऐसे करो रस्ते पर, कि संसार में भी मर्यादा अनुसार चलना पड़ता है। नहीं है किसी कारण से नहीं हो सकता है, पहन के आ जाओ, सफेद शाल थैली में डाल के लेके आओ और शाल ओढ़ लो, कर सकते हैं ना प्रबंध, ऐसे कुछ कर सकते हैं। लेकिन बाबा ने बहुत दफा कहा, बाबा कभी शरीर स्थूल चीजों को नहीं कहता है, फिर भी अगर जहां नहीं हो सकता है वहां रंगीन कपड़े पहन के आ जाओ को हर जाने, ठीक है मंजूर? अभी टीचर मंजूर करेंगे ना टीचर भी बताएंगे ना, परिस्थिति देखना चाहिए ना, ऐसा राजस्थान में ऐसा है, लेकिन बाहर भी राजस्थान की माताएं जो बाहर रहती है लौकिक में पूरी परिवर्तन नहीं, परिवार में कोई नहीं चलता है तो उनके सामने ये समस्या होता है, को अर्जन इससे कपड़े चेंज करके पहन के आने से कोई कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। लेकिन आत्मा को याद रहे कि ये रूहानी सभा है, कि मैं इस शरीर में आत्मा हूं, आत्मा का मेन है, शरीर का गति सदगति करने नहीं आए हम, आत्मा के करने आए, तो आत्मा पर ध्यान रहे, ऐसा कर्म ना हो, मेन रूहानी